أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ہم نے کل لیکچر نمبر 9 پڑھا تھا، یعنی لیکچر نمبر 9 کا ایک حصہ ہم نے کل پڑھا تھا، دوسرا پڑھیں گے. اس لیکچر میں حضور مرشد کریم نے بتایا کہ کائنات جو ہے یہ پوری کی پوری پوری کائنات علم ہے، اور علم جو ہے یہ نزول کر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، اور نزول کر کے یہ حواس کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے، اور پھر یہ حواس جو ہیں یہ کائنات کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو علم نزول کرتا ہے اس کے تین رخ بتائے. پہلا رخ جو تجلی ہے اور وہ لطیفہ اخفا کے اندر نزول کرتا ہے، پھر دوسرا رخ اس تجلی کا ایک اپنا وصف ہے اور وہ لطیفہ سری میں متحرک ہوتا ہے، اور پھر تیسرا رخ جو ہے وہ تجلی کے وصف کی تشکیل ہے. یعنی تجلی اپنے اوصاف کے ساتھ خد و خال اختیار کر لیتی ہے، اور اس وصف کا نزول پھر یا ان خد و خال کا نزول جو ہے وہ لطیفہ قلبی میں ہوتا ہے، اور پھر اسی وصف کا نام نگاہ رکھا گیا، اور پھر یہی وصف جو ہے کہیں گفتار بن جاتا ہے تو سماعت بن جاتا ہے تو شام اور مشام کی صورت اختیار کر کے، تو وہ رنگین ایک رنگینیوں کا ایک پیکر بنا دیتا ہے، اور وہ رنگینیوں کا پیکر جو ہے وہ لطیفہ نفسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اب یہ تینوں حرکتیں، یعنی کہ تجلی کا نزول، یعنی علم اور وصف اور اس کی تشکیل، یہ تینوں پر یک وقت ہو رہی ہوتی ہے. اب اسی بات کی انہوں نے شرح یوں کی کہ جب ہم کسی چیز کو جاننے کا ارادہ کرتے ہیں یا ہمارے ذہن کی حرکت کسی چیز کو جاننے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ عمل لطیفہ اخفا میں ہوتا ہے، اور پھر دوسری یہ گویا اسی کو تجلی کہا گیا ہے. اور دوسری حرکت جو ہے وہ کسی چیز کو محسوس کرنا ہے. اب محسوس کرنا لطیفہ سری کا عمل ہے. اب جاننے اور محسوس کرنے کے بعد کسی چیز کے بارے میں خواہش پیدا ہوتی ہے، تو خواہش کے بعد خواہش قلب میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد عمل کا صدور، عمل صادر ہوتا ہے. یہ لطیفہ نفسی کی حرکت ہے، عمل کا صادر ہونا. یعنی اب اس کو ٹرمنالوجیکلی دیکھیں تو ثابتہ سے ایک حرکت شروع ہوئی، عینیہ میں آئی، اور وہاں سے جویہ میں اس کی تکمیل ہو گئی. یہ ساری باتیں، یہ فارمولے بتا کر گویا یہ اس کا تعلق جوڑ دیا گیا روح انسانی سے، روح اعظم سے، روح انسانی سے، اور روح حیوانی سے. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم جب دوسری موجودات کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو اس لیے دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ان کے اور ہمارے درمیان اللہ کی صفات کا رشتہ کامن ہے. یہ کامنیلٹی جو ہے یہ ریزن بنتی ہے کہ ہم اللہ کی دیگر مخلوقات کو دیکھیں وہ، اور ان کو پہچانیں، اور وہ ہمیں پہچانیں. اور اس ساری ترتیب اور تشکیل اور تدوین پر اللہ کے جن اسماء کی حکمرانی ہے، ان میں سے ایک اسم اللہ ہے اور دوسرا قدیر ہے. اور قدیر قدرت رکھنے والے کو یا قادر بھی کہا گیا ہے. اب اس کا اجمال، یہ پیج نمبر ہے 84، اور ہم اجمال کہتے ہیں اس کا ایک مختصر جائزہ، بریف یعنی اس کی فضیلت یا اس کی سوری اجمال یعنی ایبریجمنٹ یعنی کسی چیز کا ایک سمری سی کر دی گئی ہے پوری بات کی. تو یہ سارا نظام جو ہے اس کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد کو علم الاسماء اس لیے سکھایا کہ بندہ کائنات کی رنگا رنگ زندگی کا مشاہدہ کرے اور کائناتی حیات میں تفکر کرے. جب کوئی بندہ جد و جہد اور کوشش سے اللہ کے قانون کا تقاضا پورا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر عرفان کے دروازے کھل جاتے ہیں. عرفان دو طرح کا ہوتا ہے. اب یہ عرفان عرف سے ہے. لفظ عرف میں نے جاننا, عرفان بھی جاننے کو کہتے ہیں. اب یہ جانکاری دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہے صفات کا عرفان اور دوسرا ہے ذات کا عرفان. اب یہ صفات اور ذات اگر ہم اسے ٹرمنالوجی کے سینس میں لیں تو پتہ نہیں ہم کہاں کھوئے رہے ہیں, لیکن اس کو ایک مثال سے سمجھیں. اب میں پڑھ رہا ہوں تو پڑھ رہا ہوں یہ عمل ہے, پڑھنا ایک صلاحیت ہے. میں کیسا پڑھ رہا ہوں, اچھا پڑھ رہا ہوں برا پڑھ رہا ہوں, یہ اس کی صفات ہو گئی. لیکن یہ ساری صفات اور یہ سارا پڑھنے کا جو پروسیس ہے یہ کر کون رہا ہے؟ تو میں کر رہا ہوں. میں جو ہے یہ ایک ذات ہے. اب یہ اس کو آپ خود پہ لگا کے دیکھیں, آپ سن رہے ہیں, آپ یہ ذات ہے اور سن رہے ہیں. سننے کا عمل جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے, یہ آپ کی صفت ہے. یعنی سماعت رکھنا آپ کی صفت ہے. سننا کسی ذات کی صلاحیت ہے. اب یہ جو ذات کو جاننا ہے, یہ جس کی صفت ہے اس کو جاننے کو ذات کا عرفان کہا گیا. اب صفت کسی کی خوبی یا خامی, لیکن وہ خوبی اور خامی ہے کس کی؟ جس خامی ہے, جس کی خوبی ہے. وہ خامی اور خوبی کو ہم صفت کہیں گے اور جس کی ہے اس کو ذات کہیں گے. تو ذات کیا ہے؟ اب اس کی ڈیفینیشن آتی ہے فردر کہ یہ ذات ہوتی کیا ہے. ذات کی ڈیفینیشن جو حضور قلندر باب اولیاء نے کی ہے, یہ لا شمار حرکات کا مجموعہ ہوتی ہے اور آگے لا شمار حرکات کو جنریٹ کرتی ہے یا پیدا کرتی ہے یا وجہ بنتی ہے ان کی. عرفان دو طرح کا ہوتا ہے, ایک صفات کا عرفان, دوسرا ذات کا عرفان. اب اللہ کو جاننے میں کچھ لوگ اللہ کے کاموں کو جانتے ہیں, کچھ لوگ اللہ کی صفات کو جانتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی ذات کو جانتے ہیں. یعنی جس کی وہ صفات ہیں اس کو جانتے ہیں یا جو وہ کام کر رہا اس کو جانتے ہیں. اب جانکاری کے بھی آگے درجے ہیں. تو صفات کا علم جاننے والا بندہ ظاہری خد و خال کے اندر باطنی خد و خال کا مشاہدہ کرتا ہے. یہ ہے جو صفات کا علم رکھتا ہے وہ بظاہر دیکھتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے. مثلا جیسے آپ گلاب کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کے ظاہری خد و خال ہیں, اس کی شکل کیسی ہے, لیکن وہ اس کے اندر باطنی خد و خال, یعنی اس میں رنگ کیسا ہے, اس کی خوشبو کیسی ہے, کہاں سے آئی, کیسے دوسری خوشبویات سے ڈفرینٹ ہے وہ, तो उस चीज का वो मुशाहिदा करता है, सिफात का जानने वाला बंदा, यानी वो फर्द कायनात की रूह का वकूफ हासिल कर लेता है, उसके सामने आलमीन का रिकॉर्ड आ जाता है। तो सिफात का इल्म रखने वाला बंदा फरिश्तों से, हशर नशर से, आलम राफ से, बरज़ख से, समावात से और अर्शो कुर्सी से वाकिफ हो जाता है। यानी कि जब कोई बंदा ज़ाहरी खदोखाल के मुताले में इतना इनहमाक आ जाए कि वो बातनी खदोखाल का मुशाहिदा कर ले, तो उसके सामने रफ्ता रफ्ता उसका जहन इतना वसी हो जाता है कि वो फरिश्तों से, हशर नशर से, आलम राफ से, बरज़ख से, समावात क्या है, अर्श और कुर्सी क्या है, उनसे वाकिफ हो जाता है, उसका वकूफ वो हासिल कर लेता है, वो जान लेता है कि हमारी दुनिया की तरह और भी बेशुमार दुनियाएं हैं। जिस तरह हमारी जमीन पर नौ इंसानी, नौ हैवानी, नबातात और जमादात हैं, इसी तरह दूसरी दुनियाओं में भी मौजूद हैं। दूसरा रुख अल्लाह की जात का इरफान है। जात का आरिफ ये जानता है कि कायनात की तखलीक किन फार्मूलों पर हुई है, यानी उसका जहन ये जो बनी हुई चीजें इनकी बनावट के मैकेनिज्म को भी समझ लेता है, जो जात को जानता है। और कायनात में अल्लाह की कौन सी मशीयत काम कर रही है, मशीयत मैंने कि अल्लाह किसी चीज को कैसा चाहते हैं, किस तरह का चाहते हैं, और कायनात में अल्लाह की कौन सी मशीयत काम कर रही है। इरफान चाहे जाती हो या सिफाती, उसको हासिल करने के लिए अपनी रूह का इरफान जरूरी है। यानी सबसे पहले हमें खुद को, खुद अपने आप को जानना है, और इस दर्जे पे जानना है कि मुझे मालूम तो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये कौन करवा रहा है। यानी आपको अपनी रूह का इरफान हो, और इसीलिए हजूर अलैहिस्सलाम की ये जो हदीस है इसका कि मन अरफा नफ्सहू, जिसने खुद को जाना, फकत सिर्फ वो अरफा रब्बहू, जान सकता है अपने रब को। यानी अगर हम अपने खालिक को जानना चाहते हैं तो आपको अपने मखलूक होने को समझना है। अब अल्लाह का हर इस्म बहसियत इल्म के अलीम है, अल्लाह का हर इस्म बहसियत इल्म, यानी अल्लाह का हर इस्म इल्म का एक पूरा चैप्टर है, और उस इल्म का मालिक और बनाने अपनाने वाला जो है वो क्या हुआ, वो उस इल्म के हवाले से उसका अलीम, उसको जानने वाला हुआ। और इसी तरह फिर अल्लाह का हर इस्म बहसियत खालिक के, अगर कोई इस्म तखलीक की कदरों में काम कर रहा है तो वो कदीर भी है। कदीर का मतलब है कि उसको कुदरत हासिल है मिकदारों का तायुन करने की और उन मिकदारों को दूसरों को मुंतकिल करने की। वही बात जो पहले कही गई है दोबारा फरमा रहे हैं कि अल्लाह का हर इस्म तीन तजलियों का मजमू है, और अल्लाह के हर इस्म की हुक्मरानी कायनात के ऊपर मुहीत है। मुहीत मैंने अहाता किए हुए, इन्हीं तजल्लियात का नजूल मुख्तलिफ मदारिज में होता रहता है। इन तजल्लियात का नजूल मुख्तलिफ मदारिज में होता रहता है। अल्लाह की जात का इरफान जिन अनवार से होता है, उन अनवार का नाम नहरे तस्वीर है। अब जरा गौर करें कि अल्लाह की जात का इरफान जिन अनवार से होता है, उन अनवार का नाम नहरे तस्वीद है। नहर मैंने एक चैनल है, तस्वीद सौदा का लफ्ज है, इसी से हजरे अस्वद है यानी स्याह रंग को कहते हैं, तो नहर तस्वीर जहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ पे एब्सोल्यूट ब्लैकआउट है, क्योंकि वो मादी क्या गैर मादी हवा से भी ऊपर की चीज है। तो उन अनवार का नाम नहर तस्वीर है। अब ये बात मजीद वजाहत तलब है कि रूह के तीन परतों को, अब देखें रूह के कितने परत हैं, तीन, और अल्लाह के अनवार की चार नहरें सैराब करती हैं। अब रूह के तीन परत और उनको चार नहरें सैराब कर रही हैं। अब पहली नहर का नाम नहर तस्वीद है, और नहर तस्वीद लतीफ़ा अख्फा में नजूल करती है। जितनी भी नौओं के अंदर लतीफ़ा अख्फा मौजूद है, इस नूरानी नहर के जरिए वो एक दूसरे से मुतारिफ और रूशनास है। हम जब इल्म का तस्करा करते हैं तो इल्म को महफूज करने के लिए हाफ़ज़े का नाम देते हैं। तो इल्म को महफूज करने के लिए हाफ़ज़े का नाम देते हैं, यानी जब जिसे हाफ़ज़ा कहते हैं वहाँ हाफिज, हिफ्ज़ होना यानी याद रहना, याददाश्त का नक्श बन जाना, इसी से फिर आगे लोहे महफूज भी है। तो नहरे तस्वीद के अनवार ही वो शुआएं हैं जो इंसान जिन्नात और दी रूह अफराद के अंदर हाफ़ज़ा बनती हैं। जब हम किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं या किसी भूली हुई चीज़ को शऊर के अंदर महसूस करते हैं तो ये काम हाफ़ज़ा का है। इसको बहुत आसान और मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तसर अल्फाज में बयान करना इस तरह मुमकिन है कि कायनात में अज़ल से अबद तक का तमाम रिकॉर्ड और तमाम मालूमात का ज़खीरा, अजल से अबद तक का तमाम रिकॉर्ड और तमाम मालूमात, जितना भी इल्म है, मालूमात जितना भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन है, उनका जखीरा नहरे तस्वीर में है। अगर सालक उस जखीरे से इस्तफादा करने की सलाहियत हासिल कर ले तो वो लाखों साल बाद के या लाखों साल पहले के ज़मानों में गुजरे हुए वाक़यात और हादसात को देख सकते हैं। लतीफ़ा अख़फ़ा के अंदर कायनात से मुतालिक जो अज़ज़ा मुंतकिल होते हैं वो भी नहरे तस्वीद की शुआओं के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कायनात की तख़लीक से पहले अल्लाह के जहन में कायनाती तख्लीकी प्रोग्राम जिस तरह मौजूद था वो सब नहर तस्वीद के जरिए लतीफ़ा अख़फ़ा में नजूल करता रहता है। कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह के जहन में जो कायनाती प्रोग्राम जिस तरह मौजूद था वो वहाँ महफूज है। वो सब गोया नहरे तस्वीद के जरिए नहरे लतीफ़ा अख़फ़ा में नजूल करता रहता है, यानी कि उस हार्ड डिस्क से हमारा राबिता इस नहरे तस्वीद के जरिए, ये वो चैनल है जिसके जरिए हम मेन हार्ड डिस्क से कनेक्टेड हैं। हर अमल और कायनात की हर हरकत नहरे तस्वीद से शुरू होती है और नहरे तजहीर पर इसकी तकमील होती है। इब्तदा और तकमील का ये सिलसिला हर आन और हर लम्हा जारी और सारी है। जिंदगी की हर हरकत अल्लाह के जहन से शुरू होती है और वापस अल्लाह की तरफ लौट जाती है। यही वजह है कि अल्लाह की सिफात का सहारा लिए बगैर किसी हरकत का वजूद में आना मुमकिन नहीं है। अभी आपने सिर्फ दो नहरों के नाम सुने, नहरे तस्वीद और फिर आखिरी नीचे नहरे तजहीर, इनकी आगे शरह आ रही है। इस कैफियत को महसूस करें, इंसान एक गुमशुदगी के आलम में था, उसको समात हासिल थी न बसारत, यानी उसको न सुनने की हिस्स थी उसमें न देखने की, क्योंकि समात और बसारत दोनों हासिल नहीं थी, इसलिए उसको अपनी, इसलिए उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। अल्लाह ने जब मखलूक को मुखातिब किया तो मखलूक की हैसियत कायम हो गई। भाई अल्लाह ने जब मुखातिब किया तो जाहिर है अल्लाह ने किसी चीज को मुखातिब किया तो जिसको मुखातिब किया उसकी हैसियत बन गई। इंसान का और तमाम कायनात का अल्लाह के साथ एक अटूट रिश्ता है, ऐसा रिश्ता कि अगर वो टूट जाए तो कायनात मुनादिम हो जाएगी। और ये रिश्ता हमारे अंदर आगे दो रुख मुतय्यन करता है, एक रुख का नाम है एहसास और दूसरे रुख का नाम है महसूस करना। यानी ये जो हम किसी भी चीज का एहसास है हमारे अंदर या हम किसी भी चीज को महसूस करते हैं, असल में वो इस रिश्ते की वजह से। जिस तरह इंसान ने अल्लाह को देख कर ये महसूस किया था कि मैं मखलूक हूं, मैं मغلوب हूं या किसी का ताबे हूं, तो यही कवानी, यही कानून पूरी जिंदगी और आलमीन में जारी है। अब जब हम इसकी वायलेशन करते हैं तो तकलीफ में चले जाते हैं। अगर ये कानून हमें समझ आ जाए कि मैं मखलूक हूं, मغلوب हूं, किसी के ताबे हूं, तो गोया हम अल्लाह को महसूस करने के काबिल हो जाएंगे। आपस में जब दो दोस्त या दो अफराद मिलते हैं, ये एक दूसरे को देखते हैं तो उस दोस्त का असर कबूल करते हैं। ये असर दो तरह का होता है। अब दो दोस्तों में से एक असर डालने वाला होता है और दूसरा दोस्त असर कबूल करने वाला होता है। दोस्त दूसरे दोस्त को देखकर अपनी मालूमात के मुताबिक कोई राय कायम करता है, यानी दूसरे दोस्त की सिफात को बतौर एहसास अपने अंदर कबूल करता है। अब सिफात को कबूल करने का मतलब ये कि फर्द की सिफात को कबूल करके उसने अपनी महकूमियत का एतराफ किया। अब ये कानून इंसान, हैवानात, सब मवाद, नबातात सब में मुश्तरक है। दरख्त को हम उस वक्त तक दरख्त तस्लीम नहीं कर सकते जब तक दरख्त की सिफात को अपने अंदर कबूल ना कर ले। इसी तरह कोई दरख्त उस वक्त तक दरख्त नहीं है जब तक किसी इंसान की सिफत से मगलूब होकर अपनी महकूमियत का एतराफ ना करे। अब देखने की तर्ज यह है कि मखलूक का हर फर्द दूसरे फर्द को अपने अंदर देखता है, और अपने अंदर देखना उस वक्त मुमकिन है जब नफी कर दी जाए। अपनी नफी करना ही मगलूब होना और महकूम होना है। जरा इसको दोबारा समझ लें। देखना, आप किसी से मिलते हैं, जो ही आप किसी को मिलते हैं आप उसके चेहरे पे नजर डालते ही समझ जाते हैं ये बंदा बड़ा खुश है, ये बंदा बड़ा मुतमइन है, ये बंदा भूखा है, ये बंदा गुस्से में है, ये बंदा बड़ा अफसुर्द है। महसूस करते हैं या नहीं? जो ही ये कैफियतों का हमारे अंदर एहसास उजागर हुआ तो आप क्या हुए? आपने महसूस किया। अब वो महसूस करते ही हम आगे से रिएक्ट कैसे करते हैं? हम अगर वो खुश है तो हमारे चेहरे पे भी खुशी आ गई, ये हमारी महकूमियत हुई, हमने उसकी खुशी के साथ खुद को वाबस्ता भी किया और सरेंडर भी किया, तभी हमने उसकी खुशी का असर अपने अंदर कबूल किया। दूसरा, अगर वो अफसुर्दा है, हम भी अफसुर्दा हो गए। तो ये है वो एहसास, ये महसूस करना हुआ। एक एहसास है और एक महसूस करना। जिसने महसूस किया वो महकूमियत का अगर एतराफ ना करे, उसको कैंसिल कर दे, तो गोया उसने उस की तरफ से आने वाली इत्तलात को कैंसिल कर दिया या उसकी नफी कर दी। अब दोबारा आ जाइए वापस देखने की दो तर्ज हैं, एक तर्ज बराह रास्त देखना है और दूसरी तर्ज बिलवास्ता देखना है। बराह रास्त देखना ये है कि हमें ये समझ हो कि हर फर्द दूसरे फर्द के देखने को देख रहा है, और बिलवास्ता देखने की तर्ज ये कि हर आदमी खुद देख रहा है, हर आदमी दूसरे फर्द के देखने को देख रहा है, यानी मैं उस बंदे को बराह रास्त नहीं देख रहा, उस बंदे का अक्स मेरे जहन की स्क्रीन पे बन रहा है और मेरी जात या मेरा जहन उस स्क्रीन पे बनने वाले अक्स को देख रहा है। यह है बराह रास्त देखने की तरह। जब हम आईना देखते हैं तो हम कहते हैं हम आईना देख रहे हैं, ये देखना बिलवास्ता देखना है, और बराह रास्त देखना ये है कि पहले आईने ने हमें देखा और हम आईने के देखने को देख रहे हैं, यानी आईने ने हमारा अक्स अपने अंदर कबूल किया, उसको एक सतह पे डिस्प्ले किया और हम उस डिस्प्लेड रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम आईने को देख रहे हैं या आईने में खुद को देख रहे हैं। अब इंसानी फजीलत यह है कि उसके अंदर बराह रास्त देखने की तर्ज मुतहर्रिक हो जाए, यह है इंसानी फजीलत। इंसान की असल फजीलत यह है कि वो बराह रास्त देखने की तर्जों से मुत्तसिफ हो जाए, यानी उससे तारी कर ले, उससे वाकिफ हो कि उसकी इतनी मश्क करे कि वो उसका वतीरा बन जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम बराह रास्त देखने की मुस्तहकम तर्ज फिक्र रखते हैं, ये फर्क है आम बंदे में और अंबिया कराम में। अंबिया अलैहिस्सलाम बराह रास्त देखने की मुस्तहकम तर्ज फिक्र रखते हैं। अंबिया आम अफराद को इसीलिए अंबिया को फॉलो करना होता है कि वो बराह रास्त तर्ज फिक्र से आरास्ता होते हैं और मुस्तहकम होती है उनकी ये तर्ज फिक्र, लिहाजा दूसरे उनके फॉलोअर्स को चाहिए कि वो अपने नबी की तर्ज फिक्र को अपनाएं। अब उस तर्ज फिक्र को हासिल करने के दो रास्ते, एक रास्ता तकवीनी है और एक रास्ता कुर्ब नवाफिल वाले औलिया कराम का है। अब ये तकवीनी का मतलब है कि जब अल्लाह मियां खुद आपको किसी ड्यूटी पे लगा दें तो वो सलाहियतें आपके अंदर मुंतकिल हो जाएं, और दूसरा रास्ता कुर्ब नवाफिल वाले औलिया कराम का, यानी कुर्ब नवाफिल, नवाफिल के जरिए एक्स्ट्रा काम जो कि फराइज इबादात में से ना हो बल्कि फालतू एक्स्ट्रा यानी जो काम करने के उनके अलावा कुछ काम करके तो आप कुर्बत हासिल करने की कोशिश करें। तो बाज़ औलिया कराम जो मुजाहिदे और रियाजतें करते हैं वो कुर्ब नवाफिल कहलाती है। बराह रास्त देखने की तर्ज फिक्र को हासिल करने और अपने अंदर मुस्तहकम करने के लिए औलिया अल्लाह रियाजतों और मुजाहिदों से इस बात की मश्क करते हैं कि हमारे और कायनात के दरमियान एक रिश्ता है और वो रिश्ता अल्लाह की रबूबियत है, यानी सारी कायनात एक रिश्ते में बंधी हुई है और उस रिश्ते का ताल्लुक और उस रिश्ते की मरकजियत अल्लाह तबारक व ताला की जात। वो इस बात की मश्क करते हैं कि कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, कोई भी अमल हो, उसका रिश्ता अल्लाह के साथ जोड़ देते हैं। और इस मश्क और मुसलसल अमल से उन्हें इस चीज़ की आदत हो जाती है कि कोई भी अमल हो उसका ताल्लुक हमसे बराह रास्त नहीं है, उस चीज़ का और हमारा वास्ता अल्लाह की वजह से है। पानी और प्यास पर तफक्कुर किया जाए तो पानी भी अल्लाह की तख्लीक है, बंदा भी अल्लाह की तख्लीक है, प्यास का तकाजा भी अल्लाह ही की तख्लीक है। बंदा, प्यास और पानी तीनों आपस में इसलिए हम रिश्ता हैं कि ये तीनों अल्लाह की मखलूक हैं। मसलन अगर अल्लाह ताला पानी को तख्लीक ना करते तो प्यास ना होती और ना ही इंसान के अंदर प्यास का तकाजा पैदा होता। अलहाजल कयास, यानी आप इसी तरह जितना भी सोचते चले जाएं, कयास करते जाएं, अंदाज़ा करते जाएं, तो ज़िंदगी के तमाम वसाइल के बारे में तफक्कुर करने से यही नतीजा मुरतब होता है। मश्क के बाद इंसान आदतन ये सोचने लगता है कि मेरा अल्लाह के साथ बराह रास्त एक रिश्ता है, और जब ये तर्ज़ फ़िक्र सालिक को हासिल हो जाती है तो उसके अंदर तसर्रफ की ताकत पैदा हो जाती है। अब तसर्रफ का मतलब है दूसरी चीज़ों को अपने इरादे से इस्तेमाल करना। ये सर्फ का लफ्ज़ आपने सुना होगा ना, इसी से सारिफ, बिजली के बिलों पे लिखा होता है ना, मुअज़्ज़ज़ सारिफीन। ये सर्फ का तसर्रफ यानी इस्तेमाल करना, तो उसके अंदर फिर अल्लाह की सलाहियतों को इस्तेमाल करने की इरादे के साथ ताकत पैदा हो जाती है। अब इस बात पे यहाँ पे एक जुमला और सुन लीजिए कि एक है अल्लाह के नाम की कुलियाँ करना, बल्कि कुरलियाँ करना, यानी मुंह में दोहराते रहना और कुरलाते रहना कि जी, एक है जबानी जमा खर्च। नहीं नहीं नहीं, ये असल में सारा प्रोसेस आपको थॉट में करना है। मुंह से अदा करना, जबान से अदा होना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में उस कही हुई बात का असर आपके अंदर भी तो हो, उसको अपन अपने इनर सेल्फ में फील करके सोचने में ज्यादा जोर लगे। तो ये है अंबिया कराम की तर्ज फिक्र कि वो रास्त तर्ज फिक्र से आरास्ता होते हैं, बराह रास्त तर्ज फिक्र से। साहिब इरशाद, साहिब इरशाद क्या होता है? ये जो रुश्द और हदायत के काम करें उन्हें साहिब इरशाद कहते हैं। रुश्द कहते हैं किसी को रास्ते पे लगाना, इसी से लफ्ज मुर्शद है। तो साहिब इरशाद, जैसे ये जो हजूर कलंदर बाब औलिया के पीर व मुर्शद हैं, वो कुतुब इरशाद हैं। क्या नाम है, अबुल फैज कलंदर अली सोहरवर्दी, वो कुतुब इरशाद थे, यानी के जो लोग इरशाद करते हैं उनमें जो फिर ओहदे मिलते हैं, किसी को अपनी बातों से सीधे रास्ते की तरफ गामजन करना, रुश्द करना, उसकी रुश्द और हदायत का सिलसिला, तो ये साहिब इरशाद। और कुर्ब नवाफिल वाले औलिया कराम बराह रास्त तर्ज फिक्र को अपनी मेहनत, कोशिश और मुजाहिदों से हासिल करने की जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन अहले तकवीन या अहले निज़ाम यानी अहले निज़ामत में, यानी कुछ लोगों को अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली अता हो जाती है, तो ये तर्ज फिक्र अल्लाह की तरफ से मुंतकिल होती है। और मुंतकिली से पहले, ये मुंतकिली ऐसे नहीं हो जाती, मुंतकिली से पहले पीरो मुर्शद या मुराद अपने मुरीद की जहनी तरबियत इस तरह करता है कि जहन में चूं चरा का अमल दखल नहीं रहता, और उसके अंदर मानी पहनाने की एजेंसी न्यूट्रल हो जाती है। ये है सारा निजाम। यानी जब पीरो मुर्शद किसी बंदे के अंदर से ऐसी उसकी ज़हनी तरबियत कर दे कि वो उसके अंदर एक्सेप्टेंस का खाना बहुत बड़ा हो जाए, उसमें चूं चरा ना रहे, याद रखिए ये चूं चरा बंदा तब करता है जब उसके हवास सुकड़े हुए हो, जब हवास में वुसत पैदा होती है तो चूं चरा कम होना शुरू हो जाती है, और फिर मानी पहनाने वाली एजेंसी न्यूट्रल हो जाए, यानी मानी पहनाने वाली एजेंसी यानी अपना जहन काम करना बंद कर दे, वो अल्लाह के जहन के मुताबिक फैसले करता है, ये है न्यूट्रल होना। तो यहां पे ये माशाल्लाह आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया।